नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है, जानते हैं इस बुलेटिन में। आदित्य चोपड़ा की मां पामिला चोपड़ा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। चोपड़ा परिवार में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिवंगत फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की पत्नी पामिला चोपड़ा का निधन 20 अप्रैल को मुंबई में हुआ। वह 85 वर्ष की थी। पामिला YRF प्रमुख आदित्य चोपड़ा और अभिनेता उदय चोपड़ा की मां थी। बताया जा रहा है कि उन्हें निमोनिया हुआ था, जिसके कारण वह पिछले 15 दिनों से लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। इस बीमारी से लड़ते हुए ही उनका निधन हो गया। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को डॉक्टर प्रहलाद प्रभुदेसाई ने दी। बता दें कि पामिला भी यशराज फिल्म्स के साथ जुड़ी हुई थी। अपने प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में उन्होंने बतौर राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सिंगर काम किया था। उनके सबसे मशहूर गानों में से फिल्म चांदनी का, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का घर राजा परदेसी भी थे। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की कहानी भी पामिला ने ही लिखी थी। इसके अलावा 1981 की फिल्म सिलसिला में भी उन्होंने बतौर डिजाइनर काम किया था। सिंगर रैपर हनी सिंह के खिलाफ मुंबई में अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। एक इवेंट कंपनी के मालिक ने यूयू हनी सिंह और अन्य के खिलाफ अपहरण और उन्हें बंदी बनाकर रखने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। ENI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस खबर की जानकारी दी। फिलहाल हनी सिंह की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। शिकायतकर्ता का नाम विवेक रमन है और उसने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी है। विवेक की शिकायत के बाद हनी सिंह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। विवेक के मुताबिक उन्होंने मुंबई में फेस्टिवीना नाम के एक कार्यक्रम आयोजित कराया था, जो 15 अप्रैल को होना तय था, लेकिन पैसों के लेन देन में गड़बड़ी होने के कारण विवेक ने यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर उनमें और हनी सिंह में झगड़ा हुआ था। विवेक की माने तो शो रद्द होने से हनी सिंह काफी नाराज हो गए। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें किडनैप कर लिया। इसी को लेकर वह मुंबई पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं। परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की शादी की खबरें बीते कई दिनों से छाई हैं। इस बीच परिणीति को दो बार बॉलीवुड के बेस्ट डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के यहाँ देखा गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि परिणीति अपनी वेडिंग ड्रेसेस को लेकर मनीष के पास पहुंची थी। सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जान से मारने की धमकी मिली। सलमान के साथ राखी सावंत को भी धमकी भरे ईमेल आए, जिनमें उन्हें सलमान और लॉरेंस के मामले से दूर रहने को कहा गया, जिसके बाद अब तक कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बता दें कि सलमान को पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद राखी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमे वो धमकी देने वालों से सलमान के लिए रिक्वेस्ट करती नजर आ रही थी। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या को लेकर गलत खबर फैलाने के लिए बच्चन परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दो यूट्यूब चैनल, एक वेबसाइट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे टीवी सीरियल्स और तमाम फिल्मों व वेब सीरीज में काम कर चुके रोनित रॉय इन दिनों दुखी हैं। उन्हें उनके किसी भाई ने धोखा दे दिया। इस बात का दर्द उन्होंने सोशल मीडिया पर बयां किया। उन्होंने भाई शब्द को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद उनके चाहने वाले और करीबी दोस्त उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। स्मृति ईरानी और रूपाली गांगुली ने भी उनके पोस्ट पर कॉमेंट्स किए। रोनित ने 18 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें साफ जाहिर होता है कि किसी शख्स ने, जिनसे उनका भाई का रिश्ता है, उसने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि रोनित ने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भाई, ब्रो, इन शब्दों ने अपने मायने खो दिए हैं। जब कोई मुझे इन नामों से बुलाता है तो मैं इन्हें सीरियसली ले लेता हूँ। फिर वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता है जो मैं अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं कर सकता। वो लोग गिर रहे हैं, मैं नहीं। रोनित रॉय को यूं उदास देख उनके चाहने वाले और दोस्त परेशान हो गए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोनित ने मिहिर का किरदार निभाया था और स्मृति ने तुलसी का। तब से दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। अब स्मृति ईरानी ने रोनित के पोस्ट पर लिखा, क्या हुआ? टीवी सीरियल अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने भी रोनित रॉय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। के पॉप बॉय बैंड एस्ट्रो के मेंबर मून बिन का निधन 25 साल की उम्र में हो गया। कई दक्षिण कोरियाई चैनलों की रिपोर्ट में इस दुखद खबर की पुष्टि की जा रही है। वह संदिग्ध हालत में अपने घर पर मृत पाए गए। मून बिन की प्रबंध एजेंसी ने भी फंटागियो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से दुखद समाचार की पुष्टि की। केवल करीबी रिश्तेदारों और कॉरपोरेट कर्मचारियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।